Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gauran Dhawan Lal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवाल। नमस्ते दीपशिखा जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद मनोज जी, नमस्ते।
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवन लाल।
थैंक यू मनोज जी एंड दीपशिखा, वेलकम टू द प्रोग्राम।
Thank you, Gaurav.
A quick look at the headlines, listeners. Benchmark domestic indices fall today. Sensex slips over 300 points. Nifty falls 73 points. India and the Philippines sign over 14 MOUs, agree to elevate bilateral cooperation to strategic partnership. And New Delhi defends India's oil imports from Russia, calls criticism by US and European Union as unjustified and unreasonable.
घरेलू शेयर बाजार में आज हुई बिकवाली, घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 300 अंक से अधिक फिसला, निफ्टी 73 अंक लुढ़का। भारत और फिलीपींस ने 14 एमओयू पर किए हस्ताक्षर, दोनों देशों के बीच सहयोग को रणनीतिक भागीदारी में बदलने पर भी सहमत हुए। और भारत ने रूस से तेल आयात करने का किया बचाव, अमरीका और यूरोप की आलोचना को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया। घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही। निवेशकों की धारणा रूस से आयात होने वाले तेल पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुल्क लगाने संबंधी ताजा टिप्पणियों से भी प्रभावित दिखी। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की संभावनाओं का भी असर निवेशकों पर दिखा। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 308 अंक यानी 0.38% नुकसान के साथ 80,710 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 73 अंक यानी 0.3% नुकसान लेकर 24,649 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां भी बिकवाली तेज थी, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिखा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.14% की कमी आई, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 0.27% घाटे में रहा।
Benchmark domestic equity indices fell amid investors' caution regarding President Trump's renewed tariff threat over India's imports of Russian oil. All eyes were also on the outcome of RBI's monetary policy. The Sensex shed 308 points or 0.38% to close at 80,710. The Nifty fell 73 points or 0.3% to settle at 24,649. The broader market also fell today. The BSE Mid Cap Index lost 0.14% and the Small Cap Index slipped 0.27%.
लाभ और घाटा उठाने वाली कंपनियों पर ध्यान दें तो सबसे अधिक मुनाफे में कंपनी आज रही टाइटन, जिसके शेयरों में 2.16% की वृद्धि हुई। मारुति को 1.5% का मुनाफा हुआ। उधर ट्रेंट के शेयर 1.22% लाभ के साथ बंद हुए। 2.02% का घाटा उठाकर अडानी पोर्ट्स के शेयर आज सबसे अधिक घाटे वाले बने। रिलायंस को 1.52% का नुकसान हुआ। उधर इन्फोसिस के शेयर 1.37% लुढ़क गए।
In sectoral indices at the BSE, 13 out of 21 sectors ended in negative territory. In the top losers, oil and gas lost 0.96%, energy fell 0.74%, and the FMCG sector dipped 0.61%. In the top gainers, auto climbed around 0.38%, power rose around 0.32%, and the capital goods sector added 0.29%.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 87.80 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 98.99 पर चल रहा था. दीपिका जी, बाजार में आज की गतिविधि को किन अर्थों में ले रही? कल कुछ थोड़ी बहुत यानी कह ले कि रुझान था अच्छी खासी लिवाली की और बढ़ता बाजार नजर आ रहा था, और आज फिर हमने हालांकि गिरावट है थोड़ी ही लेकिन गिरावट है, किन अर्थों में ले रही?
मनोज जी, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अगर हम देखें जो इस समय बहुत वे कर रहे हैं मार्केट पर. एक तो ये जो वैश्विक स्तर पर एक अनसर्टेनिटी हो गई है अमेरिका के साथ, हमारा बहुत आशा थी बाजार को कि शायद ट्रेड डील हो जाएगा, लेकिन अब वो मामला थोड़ा उल्टा हो रहा है. तो इसलिए एक तो वो नर्वसनेस है. दूसरा, हम एमपीसी का मीटिंग रिजर्व बैंक का चालू हुआ है तो वो एक एक्सपेक्टेशन है कि कल क्या होता है. तो आज ये जो थे ये बड़े फैक्टर्स रहे हैं. लेकिन ओवरऑल अगर आप जुलाई का परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ा सबड्यूड रहा है क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं. तो एक तो वैश्विक स्तर पर जो हो रहा है, दूसरा कॉर्पोरेट जगत में जो उनकी अर्निंग्स हैं उसको लेकर के, ये दो तीन बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो बाजार पर हावी रहे हैं.
Sudeep Shikha, and as we keep repeatedly saying, direct investment in stocks is not for the faint-hearted. So, and they also say that you buy the stocks and don't keep looking at them, don't keep reviewing your portfolio. So for the small investor also, even for those invested in mutual funds, because it's all somewhere linked, this is like a subdued, this thing, it's about a blip, because we were earlier saying, you know, many months ago that it was overheated, but now we've seen that it's come down, it's picked up, sectoral indices also have changed. But by and large, I think the ground below is rock solid.
So if you see economy, sort of, there was a soft patch in terms of consumption also. Largely geopolitics, there was some impact on the demand. There was also, you know, this whole sentiment which was sort of keeping things down. So first quarter's been quite subdued. Going forward, there was a lot of expectation around the US trade deal that looks very difficult at current juncture. But going forward, if you look at the broad macro indicators, they still look very firm. But I think this is a time, as we say, time for consolidation. You look at things which are happening, you review and you try to consolidate your portfolio, your thing. It is not a time to sort of take big risks.
Right. And, you know, all investment advisors are also saying sit on some cash if you can.
Absolutely. Because there would be opportunities which would come to, you know, make purchases. But at this juncture, I think some bit of caution for investors, particularly retail small investors, I think is advised.
Right.
Deep Shikha ji, yadi hum apne chote niveshak hi keh lein, bade niveshak to hum avari raay sunenge nahi aur dhyan shayad na dete
hain. Unko zarurat bhi nahi hai shayad.
Lekin hamare jo chote niveshak hain, unki dilchaspi bazaar mein hoti hai. Aapne consolidation ki baat kahi, to yahan par hum ye samajhna chahenge ki अपने हाथ में कैश लेकर बाजार यदि नीचे जाता है तो भारत की जो वृहत आर्थिक पैमाने हैं वो बहुत मजबूत हैं, और दुनिया के हर एजेंसी का कहना है कि भारत की विकास गाथा थमने वाली नहीं है, यानी हम तेज गति से प्रगति कर रहे हैं अभी के माहौल में भी. ऐसे में कौन से सेक्टर आपको लग रहे हैं जहां सुरक्षित है और निचले स्तर पर बाजार कह लें कि 85-86 के स्तर से थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो उसमें अब का जो स्तर है उसमें कौन सा क्षेत्र आने वाले दिनों में उभर के अगले 2-3 वर्षों का समय हो? लेकिन इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे इस छोटे से विराम के बाद. श्रोताओं, बने रहिए मार्केट मंत्र के साथ, हम एक विराम के बाद आपसे फिर मुखातिब होते हैं.
इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट न ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद।
अरे नो टेंशन,
करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है।
आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और दीपशिखा जी आपसे अब जवाब की अपेक्षा हमारे निवेशकों के लिए चुने हुए वो क्षेत्र जहां अभी भी यानी आसार आपको नजर आते हैं कि यदि बाजार उठेगा तो वहां उन्हें अगले 2-3 वर्षों में बेहतर मुनाफा अन्य क्षेत्रों की तुलना में होगा।
मनोज जी, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है काफी मजबूत स्थिति में है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को जो ड्राइव करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो काफी मजबूत स्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि हम देखें कि हमारी जो है निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं है। एक भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत डोमेस्टिक मार्केट जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो हमारा एक्सपोजर जो है वो निर्यात में बहुत ज्यादा नहीं है। मॉनसून एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, और हमने देखा है कि इस बार मॉनसून जो है काफी अच्छा उसका स्प्रेड रहा है, तो कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से ऐसी उम्मीद है कि डिमांड जो है वो काफी मजबूत रहेगी। ओवरऑल भी एक मॉनसून की वजह से डिमांड को बूस्ट मिलता है। तो जो क्षेत्र है, एक तो कंजम्पशन का क्षेत्र है, जो कंज्यूमर्स का क्षेत्र है, वो उम्मीद की जाती है ग्रामीण क्षेत्र उसको बल देगा डिमांड को, तो एक तो वो बहुत सारे क्षेत्र हैं। उसके अलावा जो क्षेत्र हैं जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस दिया है, हमने देखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने बहुत बढ़ाया भी था और वो फोकस जारी रहेगा सरकार का, तो वो जो क्षेत्र हैं जो इससे जुड़े रहेंगे, सीमेंट हो गया आपका, स्टील कुछ हद तक, लेकिन स्टील में ग्लोबल जो मार्केट में होता है कमोडिटी मार्केट्स में उसका असर होता है, तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्र हैं वो निवेशक देख सकते हैं। और दूसरे न्यू एनर्जी के जो क्षेत्र आ रहे हैं, जैसे आपके रिन्यूएबल्स क्षेत्र है, या उसमें जिस तरह के विंड है, सोलर है, उसमें कुछ अच्छे आपको मिल सकते हैं, तो इस तरह के जो क्षेत्र हैं इनको थोड़ा आप जो निवेशक हैं उनके लिए आगे और लॉन्ग टर्म के लिए ये फायदेमंद हो सकते हैं, आकर्षक क्षेत्र।
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। भारत और फिलीपींस द्विपक्षीय सहयोग को रणनीतिक भागीदारी स्तर पर बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार लगातार बढ़ रहा है और ये 3 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया है। उन्होंने कहा कि भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा प्राथमिकता के स्तर पर पूरी की जाएगी।
हमारा बायलेटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और 3 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है।
विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्वी पेरियासामी कुमारन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 14 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही भारत और फिलीपींस के बीच वरीयता कारोबार समझौते पर बातचीत की शर्तों पर भी बातचीत हुई है। दोनों पक्षों के बीच वार्ता में रक्षा, विज्ञान और तकनीकी के साथ साथ अन्य क्षेत्र भी सम्मिलित रहे हैं। श्री कुमारन ने कहा कि भारत और फिलीपींस के बीच जल्द ही सीधी उड़ान सेवा आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने फिलीपींस राष्ट्रीयता वाले लोगों को ई टूरिस्ट वीजा दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भारत पर्यटकों के लिए 14 उन्होंने कहा कि भारतीय पर्यटकों के लिए 14 दिन की अवधि के लिए फिलीपींस ने बिना वीजा प्रवेश दिए जाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत फिलीपींस को दवा निर्यात करने वालों में एक प्रमुख देश है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने नवंबर 2017 में प्रधानमंत्री की फिलीपींस यात्रा के बाद कृषि क्षेत्र में सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया और कहा कि खास तौर पर चावल अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हम दोनों देशों के यानी कि जो ये फैसला है कि हम स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाएंगे, ये क्या दर्शाता है?
देखिए, फिलीपींस का अगर हम ज्योग्राफिक लोकेशन देखें, वो साउथ चाइना सी जो है वहाँ पर है. भारत और फिलीपींस ने कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस भी किए हैं वहाँ. तो साउथ चाइना सी जो है जियोपॉलिटिक और स्ट्रेटेजिक लेवल से बहुत इम्पोर्टेंट है. और दूसरा, भारत जो है इंडियन ओशन जो रीजन है उसको सुरक्षित करने के लिए फिलीपींस एक बहुत बड़ा साझेदार हो सकता है. और चूंकि ये संबंध जो है एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर इस पार्टनरशिप को ले जाया जा रहा है, तो इसी दिशा के में ले जाया जा रहा है कि इंडियन ओशन को जो भी खतरा आता है बाकी दूसरे से, फिलीपींस उसमें क्या सहयोग कर सकता है. तो एक तो ये एस्पेक्ट है. दूसरा, जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स अभी बदल रही है, हम देख रहे हैं कि विश्व की परिस्थिति बदल रही है, बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं, तो भारत अपने संबंध जो है खासतौर से आसपास के जो देश हैं उनके साथ और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.
राइट, सो आई थिंक दैट्स वेरी पर्टिनेंट. यू नो, वन इज ऑफ कोर्स अबाउट स्ट्रेटजी. The other is about messaging, and we are seeing, you know, big countries are sending messages about trade, and we do have a story on the new tariffs supposedly which are going to come from the US president's office. But also to say that, you know, it's not, doesn't matter, like Philippines, it's not one of the largest trading partners that we have. So whether it's a small trading partner or a big trading partner, the new world order says it's about collaboration. It's about seeing that you are respectful to every country, other than in proportion to size, but the fact that it's a collective world order which is emerging. And India is exhibiting this.
Absolutely, Gaura. I think you've just hit the nail. The idea is to have relationships, strong relationships with as many as possible. And Philippines, though it may be small in size, but we know it is doing, it has made huge advancements in the tech sector. So we have a huge tech industry. We are definitely looking at more collaborative effort there. And also strategically, it is based in a very unique geographic location. So we are not looking at South. And India, we've seen India has always championed the cause of global South. We saw, in G20. So India sees itself as the voice of global South. So, and we have never sort of differentiated in relationships in terms of size or scale or, whether you are less developed or developed. I think India has always sort of held out a very friendly hand towards all nations, whoever want to be friends with India.
Right. Before we move on to our next story, Deepshikha, let's take a short commercial break. Listeners, you stay tuned.
इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद.
अरे नो टेंशन,
करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है.
आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ENPS पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें.
Welcome back, listeners. You're tuned to Market Mantra with Akashvani. Moving on to our next headline story, the Ministry of External Affairs has said that it is unjustified and unreasonable for India to be targeted by the United States and the European Union for importing oil from Russia after the Ukraine conflict. In a statement, the ministry asserted that, like any major economy, India will take all necessary measures to safeguard its national interests and economic security. The ministry added that India began importing oil from Russia because traditional supplies were diverted to Europe after the conflict began. It said that the US had actively encouraged such imports by India at that time to strengthen global energy market stability. The ministry emphasized that India's imports are intended to ensure predictable and affordable energy costs for Indian consumers and are a necessity compelled by the global market situation. However, it is revealing that the very nations criticizing India are themselves engaged in trade with Russia. And unlike India's case, such trade is not even a vital national compulsion. The ministry noted that the United States continues to import uranium hexafluoride for its nuclear industry, palladium for its electric vehicle industry, fertilizers and chemicals from Russia. The ministry also mentioned that the European Union had bilateral trade worth 67.5 billion euro in goods and with Russia in 2024, along with trade in services estimated at 17.2 billion euros in 2023. This is significantly more than India's total trade with Russia in that year or subsequently. European imports of LNG in 2024 reached a record 16.5 million tons, surpassing the previous record of 15.21 million tons in 2022. The MEA further noted that Europe-Russia trade includes not just energy, but also fertilizers, mining products, chemicals, iron and steel, as well as machinery and transport equipment. So, Deepshikha, a very, very succinct, a very clear message on India's stance from the MEA over here, saying that please walk the talk. Now, India's stance vis-a-vis how the global world trade order, as America sees it or Mr. Trump sees it, is moving, and India's stance, your views.
If you see, and Mr. Trump gave an interview to one of television channels, he's again reiterated that he will be imposing higher tariffs on India in next 24 hours. So there is a tariff threat there. But I think what India has done and the statement from the External Affairs Ministry has come out very, very clearly. I think they are sending out a clear message. You yourself are importers. So you cannot have double standards with India, again, importing crude. And crude, India is very much dependent on imported crude. For us, it impacts our citizens, it impacts our economy. So, and if besides that, India has also said, U.S. itself, in past, the officials have supported India buying crude from Russia because it stabilized the global oil market. India is a huge buyer. So India really moves the market. So I think clear signal there from India to U.S. and to all countries, all the countries who have been objecting to India buying crude from Russia.
Deepshikha ji, yahan bas do yani keh lein ki ek pankti ka sawal aur waisa hi chhota jawab aapse hum lena chahenge ki kya duniya ek dhruviya disha mein jo saal bhar pehle dikh rahi thi ab kai dhruvon mein badhti aur kam se kam do dhruv mein badhti line khinchti dikh rahi hai kya aapko?
Manoj ji, ye jo abhi vishv mein sthiti hai wo ek कहना चाहिए एक फ्लक्स का स्थिति है,
तरलावस्था.
हाँ, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है कि किस दिशा में जाएगा. जियोपॉलिटिक्स जो है वो रोज नए जो है उसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और किस तरफ जाके ऊंट बैठेगा फाइनली
जी,
वो कोई नहीं जानता.
Right.
बहरहाल हम प्रतीक्षा करें ऊंट के बैठने की और अपनी दिशा को एशिया की ओर, एशियाई बाजार की ओर ले चलें. एशियाई बाजारों में ध्यान दें तो आज कुल मिलाकर लिवाली की गई है, यानी वहां निवेशकों का मूड अच्छा रहा और उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की. निवेशकों की लिवाली से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.96% लाभ में रहा. हांगकांग के हिंगसेंग में 0.68% की वृद्धि हुई. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.64% ऊपर आ गया. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.27% की वृद्धि हुई. उधर दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.16% बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली की जा रही थी. अंतरदिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.7% लाभ के साथ चल रहा था. थोड़ी अधिक ही बढ़त दिख रही थी 0.7% से भी समाचार तैयार किए जाने तक. फ्रांस का कैक 40 0.2% ऊपर था और लंदन के फुटसी 100 में भी 0.4% की तेजी बनी हुई थी.
Look at the U.S. markets. U.S. stocks rebounded sharply on Monday, recovering from last week's sell-off, sparked by disappointing labor data and continuing trade uncertainty. The Nasdaq composite rallied 1.95%. S&P 500 ended, climbed 1.47%. And the Dow Jones Industrial Average rose 1.34%. So, Deepshikha, quickly, the U.S. market, do you think it's responding more to internal triggers than to what Mr. Trump is doing triggering across the world?
I think the U.S. market is responding to, you know, expectations around Fed finally, there are hopes that it will go in for a cut. So I think those expectations are impacting the U.S. markets right now. But I don't think the geopolitics is playing on so much on the U.S.
Right. Okay. Look at crude oil prices. Crude oil prices edged down today. Brent crude was trading 1.21%, down at $67.93 per barrel. And WTI crude was also trading 1.3% down at $65.43 per barrel. When reports last came in.
यहाँ पर तेल के दाम पर समझना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया भले ही ट्रंप साहब के जो भी यानी उनकी व्हिप जारी हो या वो धमकी दे रहे हो तेल के भाव कैसे नजर आ रहा है आपके आने वाले दिनों में बढ़ते हुए क्योंकि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये काफी ऊंचा जा सकता है
देखिए ये अंदेशा है कि शायद बढ़ सकता है दाम लेकिन अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और वक्तव्य दिया है कि हम अगर दामों को और गिरा सकें तो रशियन जो रूस की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह खत्म हो जाए प्रभावित होगी तो उन वो भी ओपेक और उन पर एक दबाव सा बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि वो प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाया है यूएस में भी वो प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो अमेरिका की कोशिश यही है कि दामों के ऊपर दबाव बना के रखा जाए
यानी तेल के दाम कम रहने के ही आसार हैं
जी
इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24 कैरेट गोल्ड वाज ट्रेडिंग 0.28% डाउन एट 1,1040 रुपीस पर 10 ग्राम्स व्हाइल सिल्वर वाज ट्रेडिंग 0.45% up at 1,13,130 rupees per kilogram a short while ago.
आइए लिए चलें आपको MCX जहां पर सोने के भाव 0.3% बढ़कर 1,891 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी सितंबर आपूर्ति वाली 1,12,725 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से दीपशिखा जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद मनोज
जी. Absolutely. Thank you so much दीपशिखा. Thank you for coming on. Listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices fall today. Sensex slips over 300 points. Nifty falls 73 points. India and the Philippines sign over 14 MOUs. Agree to elevate bilateral cooperation to strategic partnership. And New Delhi defends India's oil imports from Russia. Calls criticism by US and European Union as unjustified and unreasonable. And that's it for today's program. Namaskar.
Market Mantra.